छह गुणों के बारे में आपने पढ़ा, अब सातवां जो गुण है वह है पृथक्त्व। तो पृथक्त्व का अर्थ होता है अलग होना। तो ये जो पृथक्त्व का लक्षण बताया कि पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम, असाधारण कारण को हम पृथक्त्व कहते हैं। किसका असाधारण कारण? तो पृथक व्यवहार का असाधारण कारण। ये पृथक व्यवहार क्या है? तो अयम एतस्मात् पृथक, यह जो है इससे पृथक है या इससे भिन्न है, इस तरह का जो व्यवहार है वह है पृथक व्यवहार। और इस पृथक व्यवहार में जो असाधारण कारण मतलब विशेष कारण होता है वह पृथक तो होता है। अर्थात ये जो कहते हैं ना कि ये इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है, कैसे कहते हैं? तो पृथक तो नाम के गुण के आधार पर करते हैं। जिसमें पृथक तो गुण होता है उसी को कहा जाता है कि ये इससे भिन्न है। तच्च द्विविधम, यह पृथक तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक पृथक्त्व और द्विपृथक्त्वाधिकम। एक होता है एक पृथक्त्व और दूसरा होता है द्विपृथक्त्व, त्रिपृथक्त्व, चतुष्पृथक्त्व, इस तरह से दो प्रकार का पृथक्त्व होता है। तत्र आद्यम नित्यम, माने एक पृथक्त्व जो है यह नित्य गुण है, और अनित्यगतम अनित्यम, और अनित्य में रहने वाला जो एक पृथक्त्व है वह अनित्य होता है। द्विपृथक्त्वाधिकम च अनित्यम एव, और दूसरा जो भेद बताया था दू पृथक्त्वाधिक भेद, वह हमेशा जो है अनित्य ही होता है। इस तरह से संक्षेप में पृथक्त्व को बताया। फिर आठवां गुण है संयोग। तो संयोग का लक्षण बनाया संयुक्त व्यवहार हेतु गुण, अर्थात अयम संयुक्त इमौ संयुक्तौ इमे संयुक्ता, इस तरह से जो व्यवहार होता है माने ये आपस में संयुक्त हैं, इस तरह का जो व्यवहार है इसको कहते हैं संयुक्त व्यवहार। और इस संयुक्त व्यवहार में जो हेतु हो कारण हो ऐसे गुण को संयोग नाम का गुण कहते हैं। तो संयुक्त व्यवहार हेतु गुण, संयुक्त वाले व्यवहार का जो कारण गुण है उसको हम संयोग गुण कहते हैं। स द्वि आश्रित, यह जो संयोग गुण है वह द्वि आश्रित, द्वि आश्रय माने दो पर आश्रित रहता है, क्योंकि संयोग जो है अकेले में तो संभव नहीं है ना, दो चाहिए उसके लिए। तो सह द्वि आश्रित, यह दो में आश्रित रहने वाला गुण है। और अव्याप्य वृत्तिश्च, और यह संयोग गुण अव्याप्य वृत्ति गुण है। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए, व्याप्य वृत्ति गुण और अव्याप्य वृत्ति गुण, जो पूरे में फैला हो पूरे में रहता हो उसको कहते हैं व्याप्य वृत्ति, और जो पूरे में नहीं रह करके एक पार्ट के साथ रहता हो उसको कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। अब जैसे देखिए रूप है, रस है, गंध है, ये सब व्याप्य वृत्ति गुण है। क्योंकि रूप जो रहता है ना पूरे शरीर में रहता है, घड़ा है तो पूरे घड़े में रूप रहता है, जल है तो पूरे जल में रस रहता है, पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी में गंध रहता है व्याप्त करके, तो पूरे में व्याप्त करके जो रहे उसको कहते हैं व्याप्य वृत्ति। और जो पूरे में नहीं रह करके किसी एक अंश में रहे, किसी कुछ अवयवों के साथ रहे, उसको हम कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। तो संयोग जो गुण होता है, अब जैसे मान लीजिए दो टहनी का संयोग है, तो दो टहनियाँ तो लंबी लंबी हैं, लेकिन संयोग जो कहीं है एक जगह पर है, थोड़ी से थोड़े से हिस्से में है, पूरी टहनियों में तो संयोग है नहीं, तो इसलिए इसको अव्याप्य वृत्ति गुण कहा जाता है। आया समझ में? तो जो जैसे रूप आदि जो होते हैं वो पूरे में व्याप्त करके जो है संयुक्त होते हैं, इसलिए वह है व्याप्य वृत्ति। लेकिन संयोग गुण जो है वह पूरे में व्याप्त होकर के नहीं रहता है, इसलिए इसको अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। स्वत्रिविधः, यह जो है तीन प्रकार का होता है संयोग। कौन कौन? अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। क्या क्या? अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। आपने अभी देखा कि संयोग का के बारे में बताया कि सद्व्याश्रय माने दो में रहने वाला संयोग गुण होता है। तो दो में रहने वाला जो है ना, इस उन दोनों में क्रिया हो और दोनों में क्रिया होने के कारण अगर संयोग उत्पन्न हो तो उसे कहेंगे उभय कर्मज। और किसी एक में क्रिया रहे और एक जो में क्रिया न रहे वो निश्चल रहे और तब अगर संयोग हो उसको कहेंगे अन्यतर कर्मज। और संयोग से भी संयोग उत्पन्न होता है, तो जहाँ संयोग से संयोग उत्पन्न हो उसको हम कहते हैं संयोगज। फिर से देख लीजिए, तीन भेद किया, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। अब जैसे स्थाणु है, स्थाणु के बारे में बताया था कि ऐसा पेड़ जिसमें कि पत्ते टहनियाँ सब न हो, ऐसा जो पेड़ है केवल नीचे का पार्ट हो, जड़ वाला पार्ट हो खरा खरा, और उसके ऊपर की सारी चीज़ें जो है ना या तो नष्ट हो गई हो या किसी ने काट दिया हो, ऐसा जो स्थाणु है वह स्थाणु क्या है, निष्क्रिय है, उसमें निश्चल है, और उस पर जो है ना कोई उड़ता हुआ सेन पक्षी, सेन कहते हैं बाज पक्षी को, कोई उड़ता हुआ बाज पक्षी आया और उस स्थाणु पर बैठ गया। अब यहाँ पर उसमें सेन जो है वह तो क्रियावान सेन है, वह कर्म कर रहा है, माने कर्म माने क्रिया, क्रिया कर रहा है, लेकिन स्थाणु जो है वह निष्क्रिय है। तो एक है सक्रिय, दूसरा है निष्क्रिय, तो उस तो भी उन दोनों में जो संयोग उत्पन्न हुआ ये हो गया पहला भेद, अन्यतर कर्मज भेद। अन्यतर माने दो में से एक में होने वाला जो कर्म है, क्रिया है, उस क्रिया से उत्पन्न होने वाला संयोग का उदाहरण हुआ। आगे देखिए ग्रंथ में लिखा है, तत्र अन्यतर कर्मजो, अन्यतर कर्मज संयोग कहाँ होता है, यथा क्रियावतास्येनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः। क्रियावान जो सेन है माने उड़ता हुआ जो सेन है, उसके साथ जो निष्क्रिय स्थाणु का संयोग होता है वह अन्यतर कर्मज होता है, क्योंकि वहाँ केवल सेन में कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है, स्थाणु में कोई क्रिया नहीं है। तो एक में क्रिया होने से जो दो का संयोग होता है उसको अन्यतर कर्मज संयोग कहते हैं। अस्य ही सेन क्रिया असमवायी कारणम, यह जो संयोग है किसका, सेन और स्थाणु का जो संयोग है, इसमें सेन में रहने वाली जो क्रिया है वह असमवायी कारण है। अब उभय कर्मजो यथा, अब उभय कर्मज संयोग का उदाहरण दिया, सक्रियोर मल्लयो संयोग। मल्ल कहते हैं पहलवान को, दो पहलवान जब लड़ते रहते हैं तो एक कोई भी निश्चल नहीं रहता है, दोनों सक्रिय होते हैं, सक्रिय माने क्रिया से युक्त होते हैं, तो क्रिया से युक्त दोनों मल्ल हैं, और उन दोनों मल्लों में जो संयोग होता है वह हो गया उभय कर्मज संयोग। संयोग अच्छा, तीसरा भेद है संयोगज संयोग, उसका उदाहरण दिया, संयोग जो यथा कारणा कारण संयोगात कार्याकार्य संयोग, माने कारण और अकारण के संयोग होने से जहाँ पर कार्य और अकार्य का संयोग होता हो उसको कहते हैं संयोगज संयोग। फिर से सुन लीजिए, कारण अकारण संयोगात, संयोगज संयोग मतलब मैंने ऐसे पहले कहा ही था कि संयोग से जहाँ संयोग उत्पन्न हो उसको हम संयोगज संयोग कहते हैं। तो संयोग से संयोग उत्पन्न हो तो कौन सा संयोग लेना है, तो कहा कि कारण और अकारण का संयोग लेना है, और कारण अकारण के संयोग से जो संयोग उत्पन्न होगा कौन सा संयोग उत्पन्न होगा, तो कार्य और अकार्य का संयोग उत्पन्न होगा, वह जो संयोग है उसी का नाम है तीसरा संयोगज संयोग। उदाहरण में और भली भांति समझ सकते हैं, यथा हस्ततरु संयोगे न कायतरु संयोग। अब देखिए कि हाथ से तरु को आपने छुआ, तरु हो गया क्या वृक्ष, तो हाथ से आपने किसी पेड़ को पकड़ा, ठीक। अब यहाँ पर जो है कारण अकारण का संयोग हुआ, कैसे, तो हाथ जो है अवयव है और शरीर क्या है अवयवी है, तो अवयव जो है ना वह कारण होता है, तो आपने अवयव हस्त के द्वारा तरु को छुआ, तो यहाँ हस्त जो है यह कारण है, और तरु क्या है वह तो अकारण है, शरीर का कारण जो है हाथ तो होगा क्योंकि हाथ अवयव है शरीर का, लेकिन पेड़ तो कारण नहीं होगा ना शरीर का, वह तो अकारण ही होगा। तो यहाँ जो हाथ से जो तरु को छूते हैं वहाँ पर कारण और अकारण का संयोग होता है, माने का शरीर का जो कारण है हाथ उसके साथ अकारण जो तरु है उसका संयोग होता है, तो कारण अकारण का संयोग हुआ हस्ततरु संयोग, और हस्ततरु के संयोग होने से कायतरु का संयोग उत्पन्न होता है। कायतरु में क्या है, कार्याकार्य संयोग है, कार्य हो गया कौन काय, और अकार्य कौन हो गया तरु, है, क्योंकि कार्य क्यों, ये जो हस्त पाद आदि जो कारण है इससे किसकी उत्पत्ति होती है, काय की उत्पत्ति होती है माने शरीर की उत्पत्ति होती है, है? और तरु जो है वह उसका अकार्य है, हाथ पांव से जो है तरु की उत्पत्ति तो होती नहीं है। तो इस प्रकार से कारण अकारण के संयोग से कार्य अकार का जो अकार्य का जो संयोग होता है वही है संयोगज संयोग। जैसे हाथ से जब हम तरु को छूते हैं तो तरु के साथ शरीर का भी संयोग बन जाता है, यह जो तरु के साथ संयोग बनता है इसी का नाम है संयोगज संयोग। इसमें आप गौर करके देखेंगे तो क्या हुआ कि कारण अकारण का संयोग हुआ और कारण अकारण के संयोग होने से कार्य अकार्य का संयोग भी हो गया। अब जैसे देखिए हाथ से हम बिजली के तार को छुएं और उसमें करंट लगेगी तो शरीर में लगेगी ना, छुआ तो हाथ और करंट कहाँ लगी, शरीर में लगी, इसलिए इस संयोग को भी मानना जरूरी है। इस प्रकार से संयोग का विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया। फिर अब नवा जो गुण है विभाग नाम का गुण है उसका बता रहे हैं कि विभागोपि विभक्त प्रत्यय हेतु, विभक्त का जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय माने प्रतीति माने अयम एतस्माद् विभक्तः, यह जो है इससे विभक्त है माने अलग हुआ है। तो यह जो विभक्त प्रत्यय है, प्रत्यय माने प्रतीति, तो विभक्त प्रत्यय का जो हेतु है वो कौन होता है, तो विभाग होता है, अर्थात विभाग होने के कारण ही कोई वस्तु किसी वस्तु से विभक्त कहलाती है। अब पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, ये हुआ विभक्त प्रत्यय, इस विभक्त प्रत्यय का हेतु क्यों है, कौन है, तो पेड़ से पत्ते का विभाग होना हेतु है, यही बात है यहाँ पर। आगे कहते हैं संयोग पूर्वको द्व्यास रहा, यह जो विभाग होता है ये संयोग पूर्वक होता है और द्व्याश्रय होता है। संयोग पूर्वक होता है मतलब पूर्व में संयोग जब होगा तभी विभाग होगा, बिना संयोग हुए विभाग नहीं होता है, इसलिए कहा संयोग पूर्वक है। और फिर कहा द्व्याश्रय, और यह विभाग दो पर आश्रित होता है, स्वाभाविक है, एक जहाँ से विभाग होगा और एक जिसका विभाग होगा, तो यह विभाग संयोग पूर्वक होता है और द्व्याश्रय होता है। स्वच त्रिविधा, और यह विभाग भी तीन प्रकार का होता है, जैसे पहले संयोग के बारे में बताया था, एक है अन्यतर कर्मज, एक है उभय कर्मज और एक है विभागज। तत्र प्रथमो यथा श्येन क्रियया शैल श्येनयोर विभाग, अब जैसे किसी शैल पर माने पर्वत पर श्येन पक्षी बैठा हुआ है और श्येन पक्षी उड़ गया वहां से, तो उसके उड़ने से क्या हुआ, वहां पर शैल और श्येन में विभाग हुआ। ये जो शैल श्येन विभाग है ये श्येन की क्रिया से विभाग ये उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया अन्यतर कर्मज। शैल तो अपनी जगह विद्यमान है, केवल श्येन में क्रिया हुई है, तो अन्यतर के कर्म से माने दो में से किसी एक की क्रिया से ये विभाग उत्पन्न हुआ। द्वितीयो यथा मल्लयोर विभाग, और उभय कर्मज विभाग का उदाहरण हो गया, जैसे दो मल्लों के बीच में विभाग होता है, दो पहलवान आपस में भिड़ते हैं और भिड़ करके जो अलग होते हैं वो अलग होना जो ये उभय कर्मज है, क्योंकि दोनों मल्लों में जो है ना क्रिया होती है, दोनों ही मल्ल सक्रिय हैं। तृतीयो यथा हस्ततरु विभागात कायतरु विभाग, और तीसरा जो है विभागज विभाग, उसका उदाहरण है कि हाथ और तरु का जो विभाग है उस विभाग से काय और तरु का विभाग जो है वह उत्पन्न होता है। इस तरह से ये विभाग का तीसरा लक्षण हुआ। अब यहाँ पर एक जो है ना कारिका बताई गई है, इसका कोई बहुत इस तरह का महत्व नहीं है, लेकिन प्रसंगवश इन्होंने दिया। इसका तात्पर्य ये है कि ये तर्कभाषा ग्रंथ जो है ना, ये वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन दोनों को पकड़ करके चलता है। तो वैशेषिक दर्शन में तीन बातों को ना थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा पेचीदा माना गया है, माने थोड़ा सा कठिन माना गया है, और उसमें कहा गया कि इन तीन बातों को जो बढ़िया से जानता हो वही जो है असली वैशेषिक दर्शन का ज्ञाता है, और इन तीनों को जो बढ़िया से नहीं जानता हो वो असली वैशेषिक दर्शन का ज्ञाता नहीं है। इसी आशय का ये श्लोक है, कहते हैं कि द्वित्वे च पाकज्योतपत्तो विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धि तम वै वैशेषिकम विदु, यस्य न स्खलिता बुद्धि, माने जिसकी बुद्धि स्खलित नहीं होती है, तम वै वैशेषिकम विदुः, उन्हीं को जो है ना वैशेषिक दर्शन का ज्ञाता समझना चाहिए। कहाँ पर बुद्धि स्खलित नहीं होती है, कहाँ पर बुद्धि धगमगाती नहीं है, तो कहा कि ऊपर में, ऊपर की पंक्ति में द्वित्वे च, माने द्वित्व संख्या के विषय में। फिर पाकज उत्पत्तौ, पाकज उत्पत्तौ माने पाकज गुण उत्पत्तौ, तो पाकज गुण की उत्पत्ति में। और विभागज विभागे च विभागजे, और विभागज विभाग में, माने विभाग से उत्पन्न होने वाला जो विभाग है, इन तीनों के संबंध में, माने द्वित्व संख्या के बारे में, पाकज गुण की उत्पत्ति के बारे में, और विभागज विभाग के बारे में, जिस विद्वान की बुद्धि स्खलित न हो, जिस विद्वान की बुद्धि दगमगाए नहीं, ऐसे विद्वान को ही जो है वैशेषिकम विदुः, वैशेषिक विद्वान मानना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि वैशेषिक दर्शन में ये तीनों बातें जो है ना बड़ी गंभीर रूप से ली गई हैं, और इस पर बहुत ही व्यापक, बहुत ही विशद विचार किया गया है। आपके ग्रंथ में तो बहुत ही संक्षेप में जो है इन तीनों को बताया गया, द्वित्व के बारे में बताया गया कि अपेक्षा बुद्धि से उसकी उत्पत्ति होती है, और संक्षेप में मैंने उसको समझा भी दिया। फिर पाकज रूप रसादि की उत्पत्ति होती है, तो पाकज अपाकज दो प्रकार का होता है, वो भी मैंने बता दिया, और विभागज विभाग को भी बता दिया। तो इस तरह से आप लोग भी वैशेषिकम विदुः के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि इसके और बहुत सारे विचार हैं जो कि ग्रंथांतर में हैं और यहाँ अनुपयोगी हैं, तो उसको हम आज नहीं पढ़ेंगे। आज जो है यहीं पर आपका पाठ जो है विश्रांत होगा।